ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। अच्छे, बात याद की है, कैसे भी करो, याद के अभ्यास को सहज बनाओ। बात याद की है, तुम कैसे कर रहे हो याद, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब की बात नहीं है, किस प्रकार से किया जा रहा है। बात याद की है, याद से ही आत्मा स्वस्थ हो जाएगी। समझ की बातें, कोई सजग समझू होशियार समझदार बच्चे होते हैं, घड़ी घड़ी हर बात में, हर वस्तु में, हर चीज में, हर पदार्थ में बाप को याद करते हैं। होते हैं ऐसे बच्चे, कोई याद करते हैं अच्छे से। समझ है बच्चे साहब, तुम समझते नहीं, फिर परेशान हो जाते हो, इसलिए समझ कर चलो, चिंतन करो, अपने से विचार करो। याद करते हैं क्या और कितना करते हैं? कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा समय मुकर्रर है तुम्हारे जीवन में, जिस समय में तुम याद में रहते हो? चेक करो, भक्ति मार्ग में देखो, अनेक धर्मों में, कोई रविवार के दिन याद करता है, कोई सोमवार के दिन याद करता है, कोई मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि याद करते हैं, और ऐसे याद करते कि वो दिन पक्का रखते हैं, उस दिन बस मैं और मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, उस दिन कोई संसार नहीं है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई दिन है? चलो दिन छोड़ो, एक दिन में कोई ऐसा समय है, इस समय में बस मैं और मेरा बाबा और कुछ नहीं है, कोई ऐसा फिक्स समय? चलो समय में मैं घंटा भी नहीं पूछता, मिनट, पांच मिनट, तीन मिनट, ऐसा कोई है? कुछ भी हो जाए, इस समय में बस मैं और मेरा बाबा। महायुद्ध भी छिड़ जाए विश्व में, संकल्प निकट कर, फिर भी उस समय में मैं और मेरा बाबा, ऐसा कोई समय है? विचार करो, ये समय नहीं, इस समय में हम कोई काम नहीं करते, कोई कामकाज की बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं है, बस मैं और मेरा बाबा। है कोई ऐसा समय? उस समय से पता चलता है तुम्हारे जीवन में तुम्हारे इष्ट की अहमियत कितनी है, इंपॉर्टेंस कितना है, उस समय से पता चलता है, उस समय बताता है। कभी कभी उस समय शायद भूख लगेगी, पर तुम कहोगे नहीं, पहले बाप फिर भूख, ऐसा कोई समय है? चेक करो, रोज का तो भी उन्नति होगी बच्चे। देखो, उन्नति सिर्फ जो फिक्स है उसी से होती है, जो बदलता रहता है उससे कभी उन्नति नहीं होती। कोई सतगुरुवार को व्रत रखे, बाकी जो करना है करे 6 दिन, पर सतगुरुवार पक्का व्रत। देखो जीवन कैसे होती है, व्रत से सुखी होती कि नहीं देखो, क्योंकि पक्का है ना, सतगुरुवार पक्का व्रत। बच्चे व्रत से ही जीवन बदलती है, वही निश्चय है, वही दृढ़ता है, उसी से जीवन परिवर्तन होगी। जिसके जीवन में दृढ़ता है वही बदल सकता है, बाकी नहीं बदल सकते, मुश्किल है। जैसे दुनिया में होते हैं ना लोग, कुछ भी हो जाए 6 बजे वॉक के लिए जाएंगे, कुछ भी हो जाए शाम को जिम के लिए जाएंगे, जमीन आसमान एक हो जाए फिर भी अपना कार्य नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए इस समय में जो मिले वो खाना खाते हैं। उसका परिणाम क्या है बच्चे? कुछ भी हो जाए इस समय में सोते हैं। उसका परिणाम यह है कि वो अपने जीवन में सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि व्रत है। बच्चे जब तक व्रत नहीं है जीवन में प्राप्ति नहीं हो सकती। व्रत चाहिए, कुछ भी हो जाए हर एक घंटे में इसी समय पर, ऐसे नहीं एक घंटे में जो समय मिले उसमें, नहीं, इसी समय पर ये करेंगे। समझ है बच्चे? ये विधि है, विधि से सिद्धि मिल जाती है। बच्चों को विधि अपनानी चाहिए, बच्चे अपनाते नहीं विधि को, बस चलते रहते हैं। विधि को अपनाओ, कुछ भी हो जाए हर आधे घंटे में, एक घंटे में, एक मिनट, आधा मिनट, ये वाला अलार्म बजने के बाद बाप की याद में बैठेंगे मना बैठेंगे, कोई गर्दन भी काट दे उस क्षण, संकल्प नहीं कट कर रहे पर हम याद में जरूर बैठेंगे। समझ रहे हैं? समझदार बनो बच्चे। देखो भक्ति में भी कोई बच्चे हैं, उनका टाइम होने के बाद ना नौकरी देखते हैं, ना बिजनेस देखते हैं, ना घर परिवार देखते हैं, बस भगवान देखते हैं, इष्ट को देखते हैं। टाइम हो चुका, कहते हैं बैठो जरा हम आते हैं। क्या कहेगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कि आप नहीं जा सकते? कोई कुछ नहीं कह सकता किसी भी देश का। जाते आते थोड़ी देर में। ये बाबा कहते हैं पक्का व्रत चाहिए, ये हमारा समय है। जिसने ये जीवन दी है, जिसने ये श्वास दिया है, जिसने जीवन के सारे सुख अनुभव दिए, उसके लिए ये समय है। कुछ भी हो जाए इस समय में हम कुछ और करते नहीं, आप भूखे हो अपने से खाओ, हमारा टाइम हो चुका है। और अपने से नहीं खाना है तो रुको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पर हम इस समय में कोई मदद नहीं करेंगे। बच्चे व्रत चाहिए, व्रत ही मनुष्य को बदलता है, परिवर्तन व्रत से होता है। समझ है? आर्य चाणक्य प्रतिज्ञा की ना, चाणक्य जी ने प्रतिज्ञा की ना, और व्रत पूरा हो गया। व्रत प्रतिज्ञा होती है, कुछ भी हो जाए या तो ये या फिर वो, व्रत चाहिए। नहीं, मुझे शांत स्वरूप बनना है, व्रत है। मुझे सुख स्वरूप बनना है, व्रत है। मुझे प्रेम स्वरूप बनना है, व्रत है। व्रत से ही जीवन बदलती है। माया तो आएगी नफरत लेकर, सुख के बदले में दुख लेकर, शांति के बदले में अशांति लेकर, पर हिलना नहीं है। समझ की बात है बच्चे? चिंतन करो, व्रत से शक्ति बढ़ती है। ऐसे चलते चलते कोई पुरुषार्थ करे, उसे प्राप्ति नहीं मिल सकती। ध्यान में रखना, जो व्रत लेकर पुरुषार्थ करता है प्राप्ति उसी को मिलती है। क्या तुम्हारा व्रत है? तुम व्रत लेते हो क्या? चिंतन करो, अपने से चिंतन करो, तुम्हारा व्रत है क्या? समझ की बात है बच्चे, बाप को याद करने के लिए व्रत चाहिए। कुछ भी हो जाए, 10 मिनट में 1 मिनट, 15 मिनट में 2 मिनट, आधे घंटे में 3 मिनट, 1 घंटे में 5 मिनट, नहीं ये व्रत है, माफ करना, 5 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि भगवान को याद करने का समय हुआ है, हमारे इष्ट को याद करने का समय हुआ है। दुकान में बैठा है तो बंदा कहेगा 5 मिनट रुकिए, और अगर नहीं रुक सकते माफ कीजिए फिर अगली दुकान में चलिए। रुक सकते तो देखिए, हम 5 मिनट में आते हैं योग करके, बाप को याद करके। व्रत चाहिए, बिना व्रत के जीवन नहीं बदलेगी, ध्यान में रखना। व्रत माना व्रत, समझ है, चलते चलते किसी की जीवन बदली हो, बस मुझे एक उदाहरण बताओ, बस एक है कोई जिसकी जीवन चलते चलते बदली है? हर किसी की जीवन कठिन परिश्रम से बदली है। परिश्रम कठिन नहीं होता, वो जो व्रत है ना वो कठिन होता है, क्योंकि हर आधे घंटे में 3 मिनट निकालना है इमरजेंसी में भी, वो कठिन होता है। हर 15 मिनट में 2 मिनट निकालना है वो कठिन होता है। परिश्रम कभी कोई कठिन नहीं होता, कभी नहीं। तुम 10-10 स्टेप्स चढ़ते जाओ तो भी हिमालय चढ़ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। बस 1 मास के 6 मास लगेंगे पर हिमालय तो चढ़ ही जाओगे। व्रत चाहिए, इतना तो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए इससे नीचे नहीं आएंगे, यह है व्रत। बिना व्रत के जीवन कभी नहीं बदल सकती। हर क्षेत्र में व्रत लगता है, शरीर भी स्वस्थ बनाना है ना, तो जिम जाते हो तो भी वो व्रत है कि इस टाइम पर मुझे जिम जाना है, इस प्रकार का खाना खाना है, इतनी नींद लेनी है, व्रत है वो। नौकरी कर रहे हो वो भी तो व्रत है, सुबह 9 बजे 10 बजे ऑफिस में हाजिरी लगानी है। कुछ भी हो जाए, कितना भी तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, बिजली है नहीं है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं से तो मैनेज करके मुझे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि परिवार को पालन पोषण देना है, संभालना है, व्रत उठाया है ना, समझ है बच्चे। तुम हर क्षेत्र में व्रत उठाते हो, कोई शादी करता है तो भी तो व्रत है कि हम आजन्म इनको संभालेंगे, हर रूप से संतुष्ट रखेंगे, भरपूर करेंगे, हमसे जितना होता है इनके लिए करेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए व्रत उठाते। बच्चा भी पैदा करते तो भी तो माँ बाप व्रत उठाते, इसे इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, बड़ा अफसर बनाएंगे, हर क्षेत्र में व्रत है। बच्चे भोजन करते हो, हम बस 2 रोटी खाते, व्रत है। इतना राइस खाते, व्रत है। इससे ज़्यादा हमें नहीं जाता, व्रत है। जा सकता है, खा के देखो, 2 क्या 10 रोटी खा सकते हो, पर व्रत है 2 ही, बस थोड़ा राइस। बच्चे हर क्षेत्र में व्रत है तुम्हारा, नहीं हम सफेद ही पहनते, व्रत है। ऐसे ही बाल बनाते व्रत है, ऐसे ही चाय कॉफी पीते व्रत है, हर क्षेत्र में व्रत है बच्चे। बस इसी क्षेत्र में जो तुम आत्मा के कल्याण का क्षेत्र है, यहां तुम व्रत को भूल गए। बाकी सब व्रत याद है, हमें कम से कम 6 घंटे नींद लगती है शरीर को, व्रत है। ये क्यों नहीं कहते कम से कम 8 घंटा योग लगता है, 6 घंटा 4 घंटा योग लगता है। बात व्रत की है, समझ है बच्चे। तुम कभी कहते हो कल है ना आप सभी के लिए ये भोजन बनाते, व्रत उठाया तुमने, तुम रात सोने से लेकर वो भोजन बनने तक उसी कॉन्शियसनेस में रहते हो कि सबके लिए ये बनाना है। और जब तुम्हारा व्रत पूरा होता है तुम्हें अच्छा लगता है बच्चे। हर बात में तुम व्रत उठाते हो, बस तुम्हें याद नहीं, हर सांस लेने के लिए भी व्रत लेना पड़ता है, हर कदम चलने के लिए भी व्रत उठाना पड़ता है, हर निवाला खाने के लिए भी व्रत है, बैठने उठने जागने सोने के लिए भी व्रत है। तो आत्मिक स्थिति के लिए व्रत क्यों नहीं? इसमें व्रत की बजाय गफलत क्यों है? ऐसे क्यों है? समझ है? व्रत पर ध्यान दो बच्चे, बिना व्रत के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। व्रत इसका अर्थ है मुझे वो चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। भगवान यही देखता है कि तुम्हें वो किस प्रकार से, कितनी कोशिश से चाहिए, कितने लगन से चाहिए, कितनी ताकत से चाहिए। तुम उस अवस्था को, उस बात को, उस वस्तु पदार्थ को पाने के लिए कितने बेचैन हो, उसके ऊपर निर्भर है वो तुम्हें कितने समय में मिलेगी। चलते चलते किसी को कुछ नहीं मिलता, और मिले तो उसकी वैल्यू शून्य रहती है, उसका कोई आनंद नहीं रहता, कोई आनंद नहीं। बच्चे एग्जाम्स में 1 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक मैच द फॉलोइंग या ट्रू और फॉल्स आता है, और तुमने अच्छे से लर्न किया और वही आया है, और तुम राइट आंसर लिखते हो, उसी क्षण तुम्हें खुशी मिलती है, मेहनत सफल हुई। भले 1 ही मार्क्स जमा हुआ पर मेहनत सफल हुई। तुम कितनी चाहना से उसे चाहते हो इसके ऊपर निर्भर है वो तुम्हें कितने समय में मिलेगा। तुम्हारे अंदर कितना पागलपन है उस बात को पाने के लिए, इस पर निर्भर है तुम्हें कितने समय में मिलेगा। हर बात हर चीज पागलपन की एक मात्रा से तुम्हें उपलब्ध हो जाती है, जैसा पागलपन वैसी प्राप्ति। पागलपन माना क्या है? उस अवस्था के पीछे अपना सब लगा देना, खाते भी वही अवस्था, पीते भी वही अवस्था, वही प्राप्ति के बारे में सोच रहा हूं, कर्म करते भी वही सोच, जागते भी वही सोच, सोते भी वही सोच, कंटिन्यूअस। इस दुनिया का एक सूत्र है, उसे कायम ध्यान में रखना। कायम, जो कार्य कंटिन्यूटी में होता है उसी में सफलता प्राप्त होती है। पूजा भक्ति में थोड़ी पूजा करो उठो, वापिस आके बैठ के देखो पूजा होती है क्या। और कोई पूजा एक बार बैठे कि पूरी होने तक उठना नहीं, देखो क्या होता है। पूजा में सब आ जाता है, मालाएं, स्तोत्र, पाठ, हवन, हवन से बीच में उठ के देखो कैसे लगता है। और अपनी सीट नहीं छोड़ना जब तक हवन पूरा नहीं होता, फिर देखो कैसे लगता है। कितना भी शरीर थके, उसी आधार से सिद्धियां मिलती है, विधि ही है। एक अवस्था के पीछे अगर तुम लगे, वो तब तक नहीं छोड़ना है जब तक उसे प्राप्त नहीं करते, उसके बीच कुछ और नहीं आना चाहिए। गफलत यही है दुनिया की, इस सूत्र को नहीं समझ पा रहे। सभी चाहते चलते चलते कार्य हो जाए, नहीं बच्चे, इम्पॉसिबल है, चलते चलते नहीं होता। चलते चलते तुम चल भी जाओगे और चले भी जाओगे, पर कार्य नहीं होगा। समझ कर चलो, व्रत उठाओ कि रोज इतना घंटा, इतने मिनट, इतने सेकंड्स, कुछ भी हो जाए, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे ही करेंगे। इतना समय बाप को याद करेंगे ही करेंगे। इतना समय, इतनी बार मुरली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ड्रिल करेंगे ही करेंगे। सकाश देंगे ही देंगे। इसी में आनंद है, इसी में आनंद है, बाकी में नहीं है। सहज बनाओ, और सहज बनाने का अभ्यास है व्रत। व्रत से ही जीवन सहज बनती है। व्रत माना उपवास की बात नहीं है, कुछ छोड़ने की, कुछ पकड़ने की बात नहीं है। व्रत का अर्थ है कार्य करने का निश्चय, उस क्षेत्र में सफलता पूर्वक उस कार्य को पूरा करने का निश्चय, वो है व्रत। नहीं, माफ करना, ये हुए बिना हम पानी नहीं लेंगे, हमें पहले करने दो, खाना तो छोड़ दो, पहले ये। जीत ऐसे ही होती है, इसलिए जीत के लिए व्रती चाहिए, व्रती। और व्रती की वृत्ति सदा शुद्ध रहती है, क्योंकि व्रत की शक्ति है अंदर, दृढ़ता की शक्ति है अंदर, इसलिए व्रती की वृत्ति जल्दी शुद्ध रहती है। व्रती जिद्दी होता है, करके ही दिखाएगा, समझ होती है। ऐसे बनो, अपने आप को पाना है, पक्का निश्चय रहना चाहिए। व्रती बनो बच्चे, मैं कहा कहता हूं घंटों घंटे अभ्यास करो। कहो अभी ये एक मिनट, इस एक मिनट में मैं आत्मा और मेरा बाबा, बाकी कोई नहीं। सामने कोई शरीर भी छोड़े, मैं नहीं जानता, संकल्प नहीं कट कर, बस मैं और मेरा बाबा इस एक मिनट में। इतना पक्का होना चाहिए, तब जीवन बदलेगी, तब प्राप्ति कर सकोगे। अभ्यास करके देखो बच्चे, पूरा पूरा सहजता से नहीं होता। कुछ भी हो जाए, जितना भोजन है उसमें से आज 6 निवाले कम से कम बाप की याद में खाएंगे। कुछ भी हो जाए, कल 7 करना, परसों 8 करना। बच्चे बहुत सारी बातें तुम करते नहीं, व्रत लेना पड़ता है। व्रत को सदा याद रखो, सदा कुछ भी करो बाप की याद में स्थित हो जाओ। बच्चे तुम असफल क्यों होते हो? क्योंकि सफलता की शक्ति बाप के पास है, वो तुमने ली नहीं है याद से, इसलिए तुम असफल होते हो। बाप ने तो कहा है कोई भी कार्य करने से पूर्व एक मिनट याद में बैठो, कितनी भी जल्दी हो 10 सेकंड करो। अति बहुत बड़ी इमरजेंसी हो 1 सेकंड तो कर सकते हो, तुम करते नहीं हो, समझ रहे हैं? तो क्या होता है उस कार्य को करने के लिए? तुम्हारा जो पुराना योग बल है, जो तुमने जमा करके रखा है, वो खर्च होता है। कार्य तो हो गया पर तुम अपने आप को खाली महसूस करते हो, क्यों? क्योंकि योग बल समाप्त हुआ। व्रती बनो, पक्का व्रत, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मना, कुछ भी हो जाए, याद को पक्का करो। बच्चे मैंने तो बता दिया है क्या क्या करना है तुम्हें, आत्मिक स्थिति से लेकर अभी व्रत लेना तुम्हारी मर्जी। मैं क्या बताऊं व्रत के बारे में? बिना व्रत के कुछ नहीं मिलेगा, कितनी भी कोशिश करो, निश्चय वो समय आया करेंगे मना करेंगे, ऐसी बात है, चेक करो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? उत्तर है, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया यानी स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, गीत बजा दीजिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे? मन के द्वार में कोई कैसे आ सकता है, पता है तुम्हें बच्चे कैसे आ सकता है? विचार से आता है। तुम्हें जिसका विचार आया है वो तुम्हारे मन के द्वार में आया है। उस विचार पर अगर तुमने विचार शुरू किया, उसको तुमने ठहराया, उसको तुमने चाय पानी पिलाया, विचार को मेहमान नवाजी की तुमने विचार की, तो मन के द्वारे आकर तुम्हारे घर में प्रवेश हुआ। मन में जो विचार चल रहा है वो आया तुम्हारे मन के द्वारे। जिन विचारों में तुम खोए हुए हो वो बैठा है तुम्हारे घर में विचारों के द्वारा। कभी अभ्यास करना, वही बात बुद्धि की है। बुद्धि में जो विजन आया वो आया बुद्धि के द्वारे। जिस विजन को तुम पकड़ के बैठे बुद्धि में और बुद्धि उसमें भटक रही है, वो प्रवेश हुआ बुद्धि में। संस्कार की भी बात ऐसी है, जो संस्कार अभी इमर्ज हो रहा है वो आया संस्कार के द्वारे। और इस घड़ी जिस संस्कार में तुम फंसे हो वो प्रवेश हुआ तुम्हारे संस्कार के अंदर, घर के अंदर, सजग रहना। तीन दरवाजे हैं तुम्हारे घर को, तीन दरवाजे संभल कर चलना। इन तीन दरवाजों से माया प्रवेश होती है आत्मा के पास और आत्मा को वशीभूत करती है। तीन दरवाजे मन बुद्धि संस्कार। सदा मन के द्वार से बाप आए प्रवेश हो जाए, बुद्धि से बाप प्रवेश हो जाए और संस्कारों से भी बाप प्रवेश हो जाए। चेक करो बच्चे, ध्यान रखना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है। सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं, लिबरेट करते हैं दुख से, दुखहर्ता सुखकर्ता है। यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की यह महिमा हो न सके, लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही है, परमपिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है तो ऊंचा उनका ठाव यानी रहने का स्थान भी है। तुमको निश्चय है कि यह हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वह यानी शिव बाप शिक्षक सतगुरु है। आज सतगुरुवार है, तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह ज्ञान का सागर है। यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो, बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है परंतु जानते नहीं हैं। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनकर सदगति करे। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले, इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वह है बेहद का बाप और सब है हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं। जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है, सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। है निराकार, ऊंचते ऊंच हैं, वह लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम था, पवित्रता सुख शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेविन। हेविन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेविन के अगेंस्ट है हेल। यह बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण को यह महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार है जब शरीर से अलग है। बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पार्ट बजाते हो, तुम कितने जन्म पार्ट बजाते हो यह भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है, शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको दो बाप हैं, तुम्हारे बाप को भी दो बाप हैं। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं, यह बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी। मुक्तिधाम वानप्रस्थ अवस्था में अर्थात वाणी से परे, मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुँचावे, परंतु वह पहुँचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है, मुख्य पार्ट है भारत का, उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। दो आत्माओं का राज भी समझाया है, दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार न आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं, मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना, बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है, अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है, सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना, फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे यह मात पिता है, अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्मशास्त्र यह है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं, आत्माओं को आकर अपना पार्ट बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं, अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना? बताओ फिर कब आएंगे, तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे यह तो 5000 वर्ष का चक्र है, गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबर वार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना? भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा, कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी, जैसे मिसाल देते हैं बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा, कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं, कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया, अब राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है, सूक्ष्म वतन में है मूवी, वह भी जैसे वहाँ की एक भाषा है, जो वहाँ वह समझते हैं, समझ कर डायरेक्शन ले आते हैं, यह भी वंडरफुल बात है ना? मूवी टॉकी और साइलेंस तीन हैं। पहले मूवी के बायोस्कोप भी थे, फिर उनसे किसको मज़ा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, समझाया जाता है ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा, जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता वही है, बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है सब भक्त। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं, देखते भी हो, यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो, विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं, बाप ने समझाया है। इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो, यह है नॉन वायलेंस। कोई भी यह नहीं जानते हैं कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था, विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है, वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है, वह है अमर लोक, यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठ कथा सुनाते हैं, अमर लोक में जाने लिए बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले। यह भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं, बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं, मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी हैं, परमात्मा सत है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझ अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ। तुमको तो पार्ट बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी। चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है, पवित्र रहते हो। वह सब है डबल हिंसक। एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं, और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है। अपने आप को आपे ही चमाट मारते हैं, सबकी ग्लानी करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम ढिंढोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता, राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। वह हथेली पर बहिष्त ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे। वह दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 अच्छा ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ बनना है, बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दो नंबर, डबल अहिंसक बनना है, किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है, बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो, मनुष्य से ब्राह्मण फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता, इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा संगम की मौज का आनंद अनुभव लेते चलो। समय पूरा हो रहा है, यात्रा समाप्त हो रही है, नवयुग आ रहा है, आया कि आया, तुम आनंद लो, संगम की मौज उठाओ बच्चे। पद तो मिलेगा, सतयुग आएगा वो कहाँ जाएगा, पर संगम का क्या, भगवान के साथ के इन पलों को जियो। अच्छा, ओम शांति।
वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे में आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहरे में स्वराज अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति,
ओम शांति।